विठ्ठल भाई आज शिवपुरी में आ गए। जहाँ जहाँ महाराज का चौमासा हुआ वहाँ वहाँ विठ्ठल भाई जाते रहे। चौमासा न हो रहा हो तब भी विभिन्न अवसरों पर जाते रहे। महाराज की पुस्तक मुनि क्षमा सागर की कविताएं जब इंदौर में अमरनाथ जी शुक्ल ने अपने प्रकाशन से प्रकाशित की तब उसका विमोचन विठ्ठल भाई ने ही समव शरण के प्रांगण में किया था। विठ्ठल भाई देश के बहुत लोकप्रिय कवि हैं। ये जो बात कही थी तरल ने कि पैर झूठ के कब होते हैं, ये तो सत्य उजागर है और झूठ के खिलाफ सारे धर्म बोलते हैं। और विठ्ठल भाई के भी एक फिल्मी गीत में उन्होंने कौए से कटवाया था झूठ बोलने वाले को कि झूठ बोले कौआ काटे। बहुत ख्याति मिली थी विठ्ठल भाई को उस गीत के कारण। विठ्ठल भाई के अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। विठ्ठल भाई का ये तो कवि रूप है, वे राजनेता भी हैं, अनेक वर्षों तक विधायक रहे, मंत्री रहे, उनको एक संत राजनेता के रूप में राजनीति के लोग जानते हैं और कवि लोग उनको एक अपने नेता कवि के रूप में जानते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज वे अचानक एक सोने में सुहागे की तरह यहाँ आ गए और हमारा अनुरोध स्वीकार कर वे हमारे बीच कविता सुनाने की अनुमति दे चुके हैं। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि विठ्ठल भाई कविताएं सुनाएं।
ये बात तो सही है कि मोती सागर में ही होते हैं और सागर का ये मोती आचार्य विद्या सागर जी के मुकुट का सबसे चमकदार रत्न है। ये पहली बार हुआ है जब मैं मुनिश्री से आज मिला और उन्होंने अपनी कविता नहीं सुनाई। मैं जब भी इनके दर्शन को जाता हूं मैं इनकी कविता जरूर सुनता हूं। तब तक मुझे ये याद नहीं था कि आज यहां गोष्ठी है और गोष्ठी में एक नहीं अनेक कविताएं महाराज की सुनने मिलेगी। मैं तो अचानक आ गया, दिल्ली में था, वहां से जब शिवपुरी आने लगा तो हमारे नेताओं ने कहा क्या बात है क्यों जा रहे हो शिवपुरी। मैं कहा आपकी समझ में नहीं आएगा मैं शिवपुरी क्यों जा रहा हूं। शिवपुरी में अपना माथा झुकाने जा रहा हूं उन चरणों में जिन चरणों में आपके माथे झुक नहीं सकते। ये सौभाग्य नहीं है आपका कि आप अपना मस्तक मुनिषि के चरणों में झुकाओ। आज आकर हमारे अनेक कवि मित्र मिले, एक बहुत छोटी सी कविता है, क्योंकि मैं उस तैयारी के साथ नहीं आया था सरोज जी का आदेश मानते हुए। मुझे उदास विचलित उद्वेलित देखकर तुमने एक नाला दी, ध्यान एकाग्रता भक्ति के लिए। ईश्वर की सौगंध मैं जब जब माला घुमाता हूं तुम बहुत याद आते हो, ईश्वर को भूल जाता हूं।
क्या
और एक और बहुत छोटी सी कविता। नाग पंचमी को सपेरा आया, पूजा विधि के साथ सांप को दूध पिलाया, सोचा सांप के दांत निकालकर आदमी और सांप साथ साथ रहते हैं, आदमी और सांप साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के पेट का जरिया बनते हैं। काश आदमी के भी कोई ऐसा दांत होता जिसे निकालकर आदमी आदमी के भरोसे निश्चिंत हो जाए।
महाराज श्री का एक आदेश है कि एक छोटी रस्ती पर
बंबई की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर सर को ऊंचा और ऊंचा बहुत ऊंचा करके चलना पड़ता है, लेकिन फुटपाथ पर पड़े भिखारी को देखकर सर को नीचा और नीचा बहुत नीचा करके चलो।
बहुत खूब बहुत
शुक्रिया। अभी हमने आदरणीय विट्ठल भाई जी पटेल का अभी कविता पाठ सुना, लेकिन हम उनको फिर कहेंगे कि अगर हमने बुलाया तो फिर आना पड़ेगा। जी नहीं भरा, और जैसा कि मैं सभी की भावना से परिचित हूं और मेरी भावना के साथ शायद आप भी सहमत होंगे। और अब मैं बड़े सम्मान के साथ एक ऐसे शख्सियत को आमंत्रण दे रहा हूं जो कि हमारे प्रदेश के ही नहीं हमारे देश के जाने माने ख्याति प्राप्त गजलकार हैं, जिनको जिनकी गजलों को पढ़कर के मैंने गजल लिखना सीखा, जिनकी गजलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर यदि गीत रूप में छंदबद्ध किया जाता है तो उसकी रॉयल्टी उनको दी जाती है, जो कि बड़े ऊंचे पद से रिटायर हुए हैं, इंजीनियर हैं पेशे से, जैसे मैं चिकित्सक हूं, लेकिन मानव की भावनाएं इंजीनियर और डॉक्टर से नहीं होती हैं, वे मानवीय संवेदनाएं हैं जो कि उसको पैदाइश में मिलती हैं। मैं ऐसे परम सम्मानीय श्री चंद्रसेन जी विराट, जिनका स्वरूप भी विराट है, उनको आमंत्रण दे रहा हूं कि वे आए और अपना रचना पाठ करें। श्री चंद्रसेन विराट।
स्वरूप भी विराट है, स्वरूप ही स्वरूप है भैया। मित्रों, तकनीकी क्षेत्र से मैं आया और अपनी सेवाएं 40 साल की पूरी करके जब मैंने रिटायरमेंट लिया तो मैं सोचता रहा कि जीवन के इस तकनीकी क्षेत्र से आने वाले लोग जीवन के हर क्षेत्र में हैं, यानी जो तकनीकी क्षेत्र पढ़ाई करके आता है वो डॉक्टर भी देखा मैंने, कलेक्टर भी बनते हुए देखा मैंने, बड़े बड़े इसके बड़े बड़े फर्मों के इंडस्ट्री चलाते हुए देखा मैंने, बड़े से बड़े पद पर देखा, लेकिन आज महाराष्ट्र को देखकर मेरा मन श्रद्धा से भीग गया है। एमटेक आदमी सारी दुनिया को छोड़कर मुनि के रूप में उपस्थित है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और जैसा मुझे आदेश हुआ है, गीतकार के हैसियत से मुझे स्मरण किया गया है, तो मैं गीत से प्रारंभ करता हूँ और गीत को पहले परिभाषित करता हुआ चलता हूँ। अश्रु से आँख तो धो लो, अश्रु से आँख तो धो लो, गीत प्रारंभ करता हूँ। अश्रु से आँख तो धो लो, गीत प्रारंभ करता हूँ। गीत संस्कार दे कवि के अहम को ओम करता है, गीत संस्कार दे कवि के अहम को ओम करता है, गला कर वक्ष पत्थर का गीत ही मोम करता है, दर्द के साथ में हो लो गीत प्रारंभ करता हूँ। अश्रु से आँख तो धो लो गीत प्रारंभ करता हूँ। दूसरे छंद में उसे फिर से परिभाषित करता हूँ। दिया है आरती का वो, दिया है आरती का वो, छंद की गंध कर पूरी, दिया है आरती का वो, छंद की गंध कर पूरी, आश्रु की पांडुलिपि में है वेदना की कथा पूरी, आश्रु की पांडुलिपि में है वेदना की कथा पूरी, भीतरी द्वार तो खोलो गीत प्रारंभ करता हूँ, आश्रु से आँख तो धो लो गीत प्रारंभ करता हूँ। गीत सौंदर्य है शाश्वत, गीत सौंदर्य है शाश्वत, सत्य की आत्मा है वो, वही शिव तत्व रचना का सृजन परमात्मा है वो, वही शिव तत्व रचना का सृजन परमात्मा है वो। गीत सौंदर्य है शाश्वत सत्य की आत्मा है वो, वही शिव तत्व रचना का सृजन परमात्मा है वो। बुद्धि को भाव में भोलो गीत प्रारंभ करता हूँ, सहजतम सूत्र दर्शन का गीत सहजतम सूत्र दर्शन का प्यार के श्लोक जैसा है, सहजतम सूत्र दर्शन का प्यार के श्लोक जैसा है। देवता का प्रभा मंडल प्रखर आलोक जैसा है, शब्द को अर्थ से तोलो गीत प्रारंभ करता हूँ, इसी में भक्ति तुलसी की इसी में भक्ति तुलसी की इसी में नैन सूरा के कबीरा का यही करघा यही खड़ताल मीरा के यही खड़ताल मीरा के, इसी में भक्ति तुलसी की इसी में नैन सूरा के कबीरा का यही करघा यही खड़ताल मीरा के, प्राण के बोल ही बोलो गीत प्रारंभ करता हूँ, आश्रु से आँख तो धोलो गीत प्रारंभ करता हूँ, दर्द के साथ में होलो गीत प्रारंभ करता हूँ, बुद्धि को भाव में बोलो गीत प्रारंभ करता हूँ, शब्द को अर्थ से तोलो गीत प्रारंभ करता हूँ, प्राण के बोल ही बोलो गीत प्रारंभ करता हूँ।
मेरी ये मान्यता है कि गीत के पहले उसके प्रति कोई भी वक्तव्य न दिया जाए, गीत खुद ही एक वक्तव्य है, अगर बोल सकता है तो गीत ही बोले।
विपरीत अपेक्षा के विपरीत अपेक्षा के अनुमान गलत निकला, विपरीत अपेक्षा के अनुमान गलत निकला, बस आँख सही निकली है कान गलत निकला, विपरीत अपेक्षा के अनुमान सही निकला गलत निकला, बस आँख सही निकली है कान गलत निकला, सब पथ्य नियम पाले हो जो संन्यास्त गए, सब पथ्य नियम पाले हो जो संन्यास्त गए, पर जो जो औषधि की होते अस्वस्थ गए, औषधि थी सही मगर औषधि थी सही मगर अनुपान गलत निकला, विपरीत अपेक्षा के अनुमान गलत निकला, बस आँख सही निकली है कान गलत निकला, उस चतुर परीक्षक ने साधारण प्रश्न किए, उस चतुर परीक्षक ने साधारण प्रश्न किए,
अति उत्साही हमने उत्तर सब तुरत दिए, अति उत्साही हमने उत्तर सब तुरत दिए। हर कठिन सही था पर, हर कठिन सही था पर, आसान गलत निकला विपरीत अपेक्षा के विपरीत। उस चतुर परीक्षक ने साधारण प्रश्न किए, अति उत्साही हमने उत्तर सब तुरत दिए। हर कठिन सही था पर, आसान गलत निकला विपरीत अपेक्षा के अनुमान गलत निकला। नायक खलनायक था, नायक खलनायक था, हर शिखर एक घाटी, हर मणि निकला पत्थर, सोना निकला माटी, हर मणि निकला पत्थर, सोना निकला माटी। जिसको मानक माना प्रतिमान गलत निकला विपरीत अपेक्षा के अनुमान गलत निकला।
इसका संकेत देखें,
साधना बिना साधन, साधना बिना साधन कुछ काम नहीं आया। जो पा जाना था जिसको वह लक्ष्य नहीं पाया। था बाण धनुष सही संधान गलत निकला। साधना बिना साधन कुछ काम नहीं आया। पा जाना था जिसको वह लक्ष्य नहीं पाया। था बाण धनुष सही संधान गलत निकला विपरीत अपेक्षा के अनुमान गलत निकला।
इस छंद का भी संकेत देखिएगा
कि खंडित होकर दैवी गौरव को ढो न सकी, खंडित होकर दैवी गौरव को ढो न सकी। दुर्भाग्य की मंदिर में वह स्थापित हो न सकी। जो चुना मूर्ति हित पाषाण गलत निकला विपरीत अपेक्षा के अनुमान गलत निकला।
अब एक छंद नई उम्र को
कि प्रज्ञा ने समझाया,
प्रज्ञा ने विवेक अच्छा या बुरा सोचने का,
तो प्रज्ञा ने समझाया भावुकता कब मानी। प्रज्ञा ने समझाया भावुकता कब मानी। कब हानि लाभ सोचा जो ठानी सो ठानी। प्रज्ञा ने समझाया भावुकता कब मानी। कब हानि लाभ सोचा जो ठानी सो ठानी। भावना समक्ष यहाँ, भावना समक्ष यहाँ सब ज्ञान गलत निकला विपरीत अपेक्षा के अनुमान गलत निकला।
अंतिम
त्रासद त्रुटि के पहले, त्रासद त्रुटि के पहले सन्मति खो जाती है। त्रासद त्रुटि के पहले सन्मति खो जाती है। हो अति सुजान फिर भी गलती हो जाती है। त्रासद त्रुटि के पहले सन्मति खो जाती है, हो अति सुजान फिर भी गलती हो जाती है। विश्वास किया जिस पर इंसान गलत निकला, गंभीर अपेक्षा के विपरीत अपेक्षा के अनुमान गलत निकला। बस आँख सही निकली है कान गलत निकला।
तीन पढ़ के चले गए।
विपरीत अपेक्षा के अनुमान गलत निकला, बस आँख सही निकली
बंदियों। कि मेरा सौभाग्य है कि मनीष जी के दीक्षा दिवस पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी में मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला है। ये जो सब कहा गया महाकवि महाकवि, ये सब फालतू की बातें हैं। महाकवि जो होते हैं वो सचमुच महाकवि होते हैं, लेकिन जो संचालक होता है वो बोले क्या। तो उसको श्रीमान हमारे बहुत बड़े और पधारे और महान और अद्भुत और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और ब्रह्मांडी ये सब। क्योंकि अगर इन शब्दों का उपयोग नहीं करें तो फिर संचालक कैसा। तो ये सबको भूल जाइए। मैं मुनीश क्षमा सागर जी का भक्त हूँ और कविता लिखना मेरा एक स्वभाव रहा है। बस इतना भर मामला है कि ठीक है, मैं जैना के अधिवेशन में गया था शिकागो, जो 6, 7 और 8 जुलाई को था। वहाँ पर मैं एक जैनानुशासन की कविताएं जो महाराज जी के सानिध्य संपर्क के प्रसाद स्वरूप मैंने लिखी थी उनको ले गया। मैंने कहा अपन दुनिया भर में कवि सम्मेलनों में जाते हैं वो तो अलग किस्म की कविताएं होती हैं, लेकिन ये जैन समुदाय के बीच में मैं क्या पढ़ूंगा। तो मैं एक पुस्तक ले गया था और मैंने उसका नाम ही दिया महाराज जी को नमोस्तु करते हुए नमोस्तु। इस पुस्तिका का नाम ही नमोस्तु है और महाराज जी को ही ये समर्पित है। भीतर लिखा भी हुआ है और इसमें जैनानुशासन की कुछ कविताएं हैं। लेकिन वहां पर मुझे 7 स्थानों पर कविता पढ़ने का मौका मिला। उसमें से 3 स्थानों में केवल जैन लोग थे, बाकी मैं हिंदी समिति और अंतर्राष्ट्रीय भाषा समिति आदि के कवि सम्मेलनों में भी मैं गया। मैं जब जब वो जैन समुदाय के बीच में जाता था तब अपनी कविताओं का पाठ महाराज जी की इस मुनि क्षमा सागर की कविताएं नामक जो कविता संकलन है इसकी 2 या 3 कविताओं से करता था और कहता था कि ये मेरे काव्य पाठ का मंगलाचरण है।
बहुत
मेरी खुशी है। महावीर पंड्या जी भी देखिए, जैसे विठ्ठल भाई मंच पर अकस्मात हैं वैसे ही महावीर पंड्या जी अकस्मात श्रोताओं में हैं। और आपके शिवपुरी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रेम नारायण जी नागर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, छुपे दिख नहीं रहे हैं। इतने लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में महाराष्ट्र की छाया में कविता पढ़ना सरल बात नहीं है। आप पढ़ के देखिए, लेकिन देखिए मैं कितना कठिन काम कर रहा हूं। मैं जिन 3-4 कविताओं में से, महाराज जी की 3-4 कविताओं में से 2 छोटी-छोटी कविताओं से, किन्हीं 2 छोटी-छोटी कविताओं से मैं मंगलाचरण करता था, वो उसी मंगलाचरण से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। महाराज जी लिखा है, उसमें कुछ नहीं जोड़ा, उसमें कुछ नहीं जोड़ा, कुछ भी नहीं जोड़ा। अगर वो होता तो 1001 रुपए का आरती की बोली भी नहीं लगा सकता था। कुछ नहीं जोड़ा, उसमें कुछ नहीं जोड़ा। लोग बताते हैं पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला, पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला। जिंदगी भर अपना सब देता रहा, दे देकर सबको जोड़ता रहा।
बहुत
ये महाराज जी के स्वभाव से भी ये कविता कैसी जुड़ी हुई है मिला करके देखिएगा। हम सबकी बातें चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। आप कोई महाराज जी के पास जाइए, आप कुछ भी बोलिए, हम सबकी बातें चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि सब स्वीकार करते जाना तो कमजोरी है, सो हम इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि सब स्वीकार करते जाना कमजोरी है, तो हम इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं। क्या करें क्या करें, हम कमजोर हैं, हमसे व्यर्थ लड़ा नहीं जाता।
बहुत सुंदर।
मैंने जैना के अधिवेशन में जैनामी शासन की कविताएं सुनाते समय कहा कि ये बताइए कि इसमें मैंने किस सिद्धांत या जैन धर्म के किस कथन को पिरोया है, क्योंकि कविताएं कुछ ऐसी थी कि लगता था ये तो जाने क्या है। तो मैंने भी कह करके चुनौती देते हुए, लेकिन मेरा सौभाग्य कि सुनाने के बाद आवाज आ जाती थी कि इसमें ये सिद्धांत है, मैं आपको भी सुना रहा हूं। चार लाइनों की एक कविता है। कितना समय?
पौने चार।
बता दो। घर में कुत्ते न घुस सके, घर में कुत्ते न घुस सके, इसलिए मेरे पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा। घर में कुत्ते न घुस सके, इसलिए मेरे पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा। और घर में आदमी न घुस सके, इसलिए दूसरे ने एक कुत्ता रख छोड़ा। घर में कुत्ते न घुस सके, इसलिए मेरे पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा। और घर में आदमी न घुस सके, इसलिए दूसरे ने एक कुत्ता रख छोड़ा। मैं न आदमी रख पाया न कुत्ता, फिर भी मेरे घर में कोई नहीं घुसा।
क्या
मैं न आदमी रख पाया न कुत्ता, फिर भी मेरे घर में कोई नहीं घुसा। घुसने वालों ने सोचा होगा कि ऐसे के घर में भी क्या घुसना। घुसने वालों ने सोचा होगा ऐसे के घर में भी क्या घुसना, जिसके दरवाजे पर न आदमी है न कुत्ता। कौन सा सिद्धांत है? आप तो भी ज्यादा अमेरिका वालों से भी ज्यादा समझदार हैं। आपने बता दिया कि इसमें अपरिग्रह का कहीं न कहीं स्पर्श है। एक और कविता थी, वो भी हमारे सिद्धांतों से जुड़ी हुई एक बात उसमें कही गई थी, उसको भी आप बताइएगा कि क्या है। पतंग उड़ाते हैं, हवा नहीं होती तो उसे कहते हैं जब दूर ले जाए इस पतंग को और छोड़ दे, तो कई जगह उसको छूट बोलते हैं गुजराती में। अपन लोग उसको, हमारे यहां उसको उड़नची कहते हैं कि जरा ले जा उड़नची दे दे। महाराज जी आपने अपने बालकाल में पतंग उड़ाई? सब बच्चे उड़ाते हैं, सभी ने उड़ाई, हमने भी उड़ाई। खास करके हम जैसे लोग जिनके पास क्रिकेट खेलने के पैसे नहीं होते, वो पतंग गुल्ली डंडा, अब हमने तो वही वही किया, उसमें कम पैसे में बहुत आनंद हो जाता है। तुम्हें कोई उड़ंची दे सकता है? तुम्हें कोई उड़ंची दे सकता है?
दे सकता है, आकाश नहीं, अपनी पतंग तो तुम्हें ही उड़ाना पड़ेगी। अपनी पतंग तो तुम्हें ही उड़ाना पड़ेगी। उसकी कांप, उसके ठुड्डे, उसका मंजा, उसकी ठुमकी, उसका उचका, सबका अपना व्याकरण है। उड़ंची वाली शुरुआती उड़ान पतंगबाजी नहीं है। उड़ंची वाली शुरुआती उड़ान पतंगबाजी नहीं है। पतंग के दांव, उसके पेंच, उसकी ढील, उसके खेंच, सबका अपना गणित है। उड़ंची ऊंचाइयों का आश्वासन नहीं है। उड़ंची ऊंचाइयों का आश्वासन नहीं है। बताइए इसमें क्या है? इसमें कर्म का सिद्धांत। महाराज जी मुझको आपको किसी को तार नहीं सकते, अरहंत किसी को तार नहीं सकते, सिद्ध किसी को तार नहीं सकते, उड़ंची दे सकते हैं, फिर आपको ही उड़ाना पड़ेगा, आपको ही उड़ाना पड़ेगा। वो उड़ंची दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, उजियाला कर सकते हैं, लेकिन पतंग के साथ दम करके नहीं आ जाएंगे। इसमें जो जैनानुशासन में जो कर्म का सिद्धांत है कि हमको ही हमारा अपदीपो भव, कोई दूसरा दीपक हमारी बाती नहीं जला सकता, हमारी बाती नहीं जला सकता, अपदीपो भव, उसमें अपने को ही समिधा बनना पड़ेगा, अपना दीपक अपने को ही बनना पड़ेगा। ये जोत से जोत जगाते चलो वाला सिद्धांत नहीं है हमारा, हमारा तो अपना ही दीपक बनने का है। ये इस कविता में ये छोटी सी बात कहने की कोशिश की गई। मित्रों, ये जो मैं यहां पर प्रभावना देख रहा हूं, इसको देखकर मुझे इंदौर का महाराज का वो चौमासा जो समव शरण के मंदिर में हुआ था वो याद आता है। कितने लोग, इतने ही लोग, पर जगह कम थी, भर जाते थे, महाराज कहीं से लोग दिखते रहें, किसी आड़ में से भी दिखते रहें। एक तो ऐसा महाराज का प्रवचन हुआ था, वो अंगुली माल पर था, वो जावरा कंपाउंड के बगीचे में हुआ था, उसमें कहानी कहते हुए महाराज भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, एक रुद्रोत्सव हो रहा है, सब लोग रो रहे हैं महाराज जी से। ये बिंब प्रतिबिंब भाव, ये अनुभूतियों में डूबने का एक दृश्य कभी भूला नहीं जा सकता। और आज भी मैंने देखा कि वही हो रहा था, महाराज भी भावाकुल हो रहे थे, सब लोग भावाकुल हो रहे थे। और यही तो हम सबकी पूंजी है कि हम ऐसे गुरु से जुड़े हैं जो अनुभूतियों का समुंदर है और अपनी अनुभूतियों में जीता है। मित्रों, एक छोटी सी कविता, मैं व्यंग कवि हूं तो कहीं कहीं व्यंग भी आ जाता है कविताओं में, लेकिन बात जहां जाना चाहिए वहां पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मां के कहे अनुसार मैंने मंदिर में चावल चढ़ाए। एक बार चावल से याद आया कि खाने तक पहुंचे, मैंने भोजनालय के लोगों से कहा था कि वो जरूर रहे, यहाँ पर आए बहुत, क्योंकि हमारा जो है वो यही होता है, तो बिल्कुल उनसे मैंने कहा था, क्योंकि वहां तो ऐसा चलता है, ऐसा चलता है। और ये सबको छानी महाराज नहीं कहते किसी को, लेकिन महाराज से भी अच्छा खिलाते हैं महाराज जी, इतना अच्छा भोजन इनके यहाँ मिलता है आपके, आपकी कृपा से। मैंने उनसे कहा था कविता सुनने जरूर आना, वहीं पर नहीं लगे रहना। माँ के कहे अनुसार मंदिर में मैंने चावल चढ़ाए, माँ के कहे अनुसार मंदिर में मैंने चावल चढ़ाए, वे पुजारी की हंडी में चले गए, वे पुजारी की हंडी में चले गए, पिता के कहने पर नारियल चढ़ाए, वे बिकने को मंडी में चले गए, पिता के कहने पर नारियल चढ़ाए, वे बिकने को मंडी में चले गए। प्रभु मैं चरणों में ऐसा क्या चढ़ाऊं, प्रभु मैं चरणों में ऐसा क्या चढ़ाऊं कि जो ऐसा चढ़े कि फिर कभी उतर नहीं पाए, प्रभु मैं चरणों में ऐसा क्या चढ़ाऊं कि जो ऐसा चढ़े कि फिर कभी उतर नहीं पाए, जिसके चढ़ जाने से मैं ही चढ़ जाऊं कुछ ऊपर।
क्या बात, बहुत,
जिसके चढ़ जाने से मैं ही चढ़ जाऊं कुछ ऊपर। चावल पवित्र होते हैं, नारियल मंगल मंडित हैं, निर्माल्य निर्मल होना चाहिए, प्रभु क्या मैं स्वयं को चढ़ा पाऊंगा कभी, निर्माल सदृश बना पाऊंगा अपने को, चढ़ा देने योग्य निर्मल।
बहुत
कल महाराज जी के साथ कुछ भक्तजन बैठे थे, मैंने वहां एक कविता सुनाई थी और सबको पसंद आई, इसलिए मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। मैं इस तरह की कविताएं पहले नहीं लिखता था, दुनिया भर की लिखता था लेकिन इस तरह की नहीं लिखता था। अब महाराज जी का जो संपर्क हुआ तो उसमें कई बातें अंदर हिलोरे लेने लगी और मैंने तरह तरह की कविताएं लिखी और इतनी हो गई कि उसकी एक किताब निकल गई। अब इसमें क्या है कि नमोकार मंत्र 9 बार 5 बार इतनी बार हम पढ़ते हैं। तो एक बार मैंने मुनि श्री को समोशरण मंदिर में शाम के समय मंदिर में भक्ति करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि मैं जो नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ जिसमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और मुनि होते हैं तो उसमें से दो तो मेरे सामने ही हैं, अरिहंत और लोए शब्द साहुणम में से साधु सामने हैं। मुझे लगा कि मेरे सामने महामंत्र की पांच पंक्तियों में से दो पंक्तियां मेरे सामने आ गई हैं और एक दूसरे की वंदना कर रही हैं, एक दूसरे से संवाद कर रही हैं। इस पर मैंने एक छोटी सी टिप्पणी लिखी थी, वो इस प्रकार है। आज मैंने महामंत्र नमोकार की, आज मैंने महामंत्र नमोकार की एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति की साक्षात वंदना करते देखा। मेरे सामने नमोकार घटित हो रहा है, मैं साक्षात नमोकार को देख रहा हूं। ये भाव जब मेरे मन में आता है तब ये पंक्तियां लिखी जाती हैं कि आज मैंने महामंत्र नमोकार की एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति की साक्षात वंदना करते देखा। अरिहंत अरिहंत प्रसन्न मुद्रा में मूर्तियों में मग्न थे, अरिहंत प्रसन्न मुद्रा में मूर्तियों में मग्न थे और साधुगण साधना की प्रतिपूर्ति में नग्न थे, और भक्तगण परमानंदित भव्य दृश्य के आस्वादन में संलग्न थे। अरिहंतों की सिद्धि का प्रदीप्त आभा मंडल था और साधु संग पाथेय रूप पिछी थी कमंडल था। कविता की दो पंक्तियां एक दूसरी को संदर्भ देकर समृद्ध कर रही थी। भक्ति और सिद्धि के रंग आपस में मिलकर रंगारंग इंद्रधनुष बन चुके थे। सरोवर ने अपनी नीली आंखों से देखा, कमल की एक पंखुरी दूसरी में खुल रही थी, आनंद के अश्रुओं से हर आंख धुल रही थी।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
ये मैं प्रश्न कर रहा हूं जैसे महाराज से कि लोग जहां दूसरों के कपड़े उतारने की घात में बैठे हैं वहां आपने अपने ही कपड़े उतार दिए। देखिए कैसा विरोधाभास है, संसार कैसा है और उसने मुनि की चर्या मुनि के लिए अनुशासन कैसा है। संसार कैसा है, लोग जहां दूसरों के कपड़े उतारने की घात में बैठे हैं वहां आपने अपने ही कपड़े उतार दिए। मुनिवर क्या कपड़े उतार कर की गई साधना और बोले गए सत्य से कपड़े पहने पहने की गई साधना और बोले गए सत्य में फर्क है। मन में प्रश्न आता है कि मुनिवर क्या कपड़े उतार कर की गई साधना और बोले गए सत्य से कपड़े पहने पहने की गई साधना और बोले गए सत्य में फर्क है। साधु ने कहा है हर कार्य की एक पोशाक होती है, अगर नहीं होती तो युद्ध के सेनानी धोती कुर्ते में भी लड़ते मिल जाते। हर कार्य की एक पोशाक होती है, न होती तो युद्ध के सेनानी धोती कुर्ते में लड़ते मिल जाते। मुक्ति की साधना का अनुष्ठान प्रकृति प्रदत्त तन मन की वेदी पर ही संभव है। एक कविता है जिसमें जो प्रसिद्ध दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है तो उसी को दूसरे ढंग से उसमें कहा गया है कि दुख बड़े काम की चीज है। दुख
बड़े काम
की चीज है। दुख न हो तो कोई प्रभु को याद नहीं करेगा। आता क्यों है संसार, अगर सुखी होता तो यहां भी क्यों आता। आता है संसार, जाने क्या क्या भय हैं इस जन्म के अगले जन्म के, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां से आया हूं, कितने भय। दुख न हो तो कोई प्रभु को याद नहीं करेगा, कोई किसी से फरियाद नहीं करेगा। सुख चालाक है, सुख चालाक है, भटकाता है, अपने पते पर कभी नहीं मिलता। कभी यहां का पता केस में मिल जाएगा, पैसे में मिल जाएगा, कार में मिल जाएगा, बैंक में मिल जाएगा, भटकते रहो कहीं नहीं मिलता। सुख चालाक है, भटकाता है, अपने पते पर कभी नहीं मिलता। दुख भोला वाला, दुख भोला वाला है, दूसरों के पतों पर भी मिल जाया करता है। अच्छी बात, सुख चालाक है, भटकाता है, अपने पते पर कभी नहीं मिलता। दुख भोला भाला है, दूसरों के पतों पर भी मिल जाया करता है। दुखी बने रहो, कोई इच्छा नहीं करेगा। दुखी बने रोते रहो तो सब कहेंगे अरे भैया, अरे भैया। दुखी बने रहो, कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। सुखी हो गए तो संसार नहीं सहेगा, सुखी हो गए तो संसार नहीं सहेगा। जिंदगी को जहां छुओ घाव ही घाव हैं, और दुख में जिंदगी के स्थाई भाव हैं। दुख अंतरंग है, सदा संग संग है, सुख तो है उच्छृंखल, दुख में तमीज है, दुख बड़े काम की चीज। क्यों आते हैं लोग, इतने सारे लोग क्यों आते हैं, क्यों आते हैं लोग साधु के चरणों में, इतने सारे लोग क्यों आते हैं लोग साधु के चरणों में, इतने सारे लोग। साधु राजनेता नहीं, साधु राजनेता नहीं जो किसी का ट्रांसफर रुकवा दे, साधु राजनेता नहीं किसी का ट्रांसफर रुकवा दे, कोटा दिलवा दे, परमिट दिलवा दे। साधु कोई अफसर नहीं दबी हुई फाइल निकलवा दे, साधु कोई सेठ नहीं दान देकर निहाल कर दे, फिर भी आते हैं लोग, इतने सारे लोग। ये कैसा नदी नाव संजोग, लोग आते हैं, लोग आते हैं जन्मांतरों की, लोग आते हैं जन्मांतरों में सुखदायक जीवन की कोशिश में आते हैं, अगली यात्राओं का होलडाल जमाने। क्या बात, लोग आते हैं जन्मांतरों में सुखदायक जीवन की कोशिश में, अगली यात्राओं का होलडाल जमाने। लोग आते हैं अपनी अंधी यात्राओं के लिए कंदील की तलाश में।
बहुत बहुत,
आपके पास क्यों आता है संसार, इस तरह तरह से मन में प्रश्न बनते थे। फिर जैसे थोड़े से उत्तर भी कहीं से महाराज जी के सानिध्य में कहीं से सूझते थे, आपके पास क्यों आता है संसार, आपने संसार को लात मार दी, आपने संसार को लात मार दी, फिर आपके पास क्यों आता है संसार, आपने संसार को लात मार दी और संसार आपके चरणों में आ गिरा, और संसार आपके चरणों में आ गिरा, आपने संसार को जीत लिया है, आप सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं, राजाधिराज हैं। नहीं नहीं, मैंने संसार को लात नहीं मारी, नहीं मैंने संसार को लात नहीं मारी, संसार से किनारा भर किया है लातों से बचने को।
क्या बात है,
नहीं मैंने संसार को लात नहीं मारी, संसार से किनारा भर किया है लातों से बचने को। मुझे सम्राट मत कहो, न चक्रवर्ती न राजाधिराज, मुझे सम्राट मत कहो, न चक्रवर्ती न राजाधिराज। और ये जो संसार मेरे पास आता है, और ये जो संसार मेरे पास आता है, आता है मेरे पास शायद मेरी परीक्षा लेने। कि मुनि जी ने आज चर्या कैसी की। मुनि जी तो 7:30 बजे तक बोलते रहे और मुनि जी ने तो वैसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। आजकल कितनी चिट्ठियाँ आती हैं कि वो मुनि ऐसा कर रहे हैं, वो मुनि ऐसा कर रहे हैं, वो मुनि ऐसा कर रहे हैं, और पूछने वाला है कौन, है कौन? परीक्षा लेने वाला जो परीक्षा देता है उससे बड़ा होना चाहिए, है कौन? सब लोग आजकल मुनियों की परीक्षा ले रहे हैं। नहीं, मैंने संसार को लात नहीं मारी, संसार से किनारा भर किया है लातों से बचने को। मुझे सम्राट मत कहो, न चक्रवर्ती, न राजाधिराज, और यह जो संसार मेरे पास आता है मेरे पास शायद मेरी परीक्षा लेने कि मैं उस पद के योग्य हूं भी या नहीं जिस पर मैंने ही मुझको बैठाया है। अब मैंने ये देखा, एक रंग कवि हूं, मैंने कई बार देखा कि लोगों ने मंदिर बना लिए। मैंने वहां अटलांटा में तो ऐसा मंदिर देखा कि जहां 2 ही दिन वो खुलता है तो ठीक है, बड़ी बात है जिन्होंने बनाया, लेकिन जो सारे नियम है, जो अनुशासन है, उसका पूरा पालन नहीं होता। फिर मैंने ऐसे लोगों को कई बड़े समारोह में देखा कि जिन्होंने कलश तो खरीद लिए लेकिन फिर बम्बई में बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई तो वो अपना कलश दूसरे को देकर चले गए। फिर मैंने देखा कि मंदिर बना लिया, कई बड़े बड़े सेठों ने तो जैसे आउट हाउस में अपने कर्मचारियों के लिए मकान बना दिया जाता है, ऐसे सुविधा के लिए वहां पर मंदिर बना दिया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता कि ये क्या लगा रखा है। उसके कई बातों से ऐसे अंदर में उबलता रहा और तब मैंने ये छोटी सी कविता लिखी थी। इसका शीर्षक है जुगलबंदी। जुगलबंदी पूरा आशय यह है कि धर्म प्रॉक्सी में नहीं हो सकता, धर्म प्रॉक्सी में नहीं हो सकता। आपकी ओर से आपके लिए आपके मंदिर में पूजा करता हूं, आपकी ओर से आपके लिए आपके मंदिर में पूजा करता हूं। आप सुने या ना सुने आपके निर्देशों पर शास्त्र बांटता हूं, आपके लिए कैसेट लगाता हूं, आपके बच्चों को मंदिर ले जाता हूं, आप अपने अगले जन्म सुधारने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मुझ पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। अपनी व्यस्तता के बाद भी आपने बोली में बढ़ चढ़ कर कलश खरीद लिए, अपनी व्यस्तता के बाद भी आपने बोली में बढ़ चढ़ कर कलश खरीद लिए। आप चिंता नहीं करें, आराम से मीटिंग को निकल जाएं, मैं आपकी ओर से प्रस्थान कर दूंगा। आप उपवास रखना चाहें रख लें, मैं आपकी ओर से भूखा रहने को सहर तैयार हूं। आप उपवास रखना चाहें रख लें, मैं आपकी ओर से भूखा रहने को सहर तैयार हूं। आप मेरे दिन के भोजन की व्यवस्था कर दें, मैं आपके लिए रात्रि भोजन भी छोड़ सकता हूं। आप जो जो पुण्य जोड़ना चाहें मेरे भरोसे जोड़ लें, आप जो जो पुण्य जोड़ना चाहें मेरे भरोसे जोड़ लें, जो जो पाप छोड़ना चाहें मेरे भरोसे छोड़ लें। त्याग की इस जुगलबंदी में, त्याग की इस जुगलबंदी में दोनों का हित है। मेरे ग्रह इस जन्म में चमक जाएंगे और आप आराम से अगले जन्म में सुख पाएंगे। थोड़ा सा समय और देता है, एक अब महाराज जी इंदौर के लिए बिहार कर गए, बहुत ठंड पड़ गई थी, मैं बड़ा कंबल ओढ़े हुए गर्म कपड़े पहने हुए, उस समय महाराज की याद आती है, उस पर एक छोटी सी कविता। बहुत ठंड है शीत लहर की मावठा भी गिरा है, स्वेटर मफलर टोपी शरीर को ढके हैं, हीटर से गर्मा रहा है कमरा, पत्नी चाय रख गई है, पता नहीं तुम कहां कहां और कैसे कैसे होगे समाज सागर। बड़ा मन को बड़ा ऐसा लगा कि महाराज इस रूप में पता नहीं तुम कहां कहां और कैसे कैसे होगे समाज सागर। अपनी छाया में साधना की बत्ती फुलगाए हुए प्रभु तुम खूब याद आ रहे हो, प्रभु तुम खूब याद आ रहे हो और मैं बिना अपराध बोझ से भर गया। ये कविता मैंने महाराज जी को इतनी बार सुनाई होगी कि महाराज जी इसको सुन सुनकर बोर हो चुके होंगे, लेकिन ये कविता सुनाए बिना मुझे नहीं लगता कि मैंने कविता सुनाई है। ये भी कड़कड़ा की ठंड की बात है, थोड़ी सी उसको पकड़िए कविता प्रतीकों में है। कड़कड़ाती ठंड के दिन थे, कड़कड़ाती ठंड के दिन थे, दिगंबर साधु को देख चिड़िया को दया आई, दिगंबर साधु को देख चिड़िया को दया आई, बोली बाबा सामने की छत पर कई पाजामे सूख रहे हैं। बोली बाबा सामने की छत पर कई पाजामे सूख रहे हैं, एक लादो। साधु ने कहा अगर मेरे नाप का मिल जाए लादो, अगर मेरे नाप का मिल जाए। चिड़िया अभी तक लौटी नहीं है। नंबर दो की कमाई से मंदिर नहीं बनना चाहिए, नंबर दो की कमाई से मंदिर नहीं बनना चाहिए। मेरे ये विचार सुनकर चौधरी उत्तेजित हो गए। नंबर दो की कमाई से मंदिर नहीं बनना चाहिए, मेरे ये विचार सुनकर चौधरी उत्तेजित हो गया। बोला भाई साहब नंबर दो का पैसा कमाना सरल काम नहीं है, नंबर दो का पैसा कमाना सरल काम नहीं है। सारी आंखों से बचाकर, सारे कानूनों से छुपाकर, गुपचुप में करिश्मे से कोई कमा पाता है नंबर दो। फिर वो मेरी ओर हकारत थी, कुछ इस तरह देखता रहा मानो कह रहा हो ये दो कौड़ी का मास्टर क्या समझेगा क्या होता है नंबर दो, ये दो कौड़ी का मास्टर क्या समझेगा क्या होता है नंबर दो। फिर बोला मास्टर आप तो बस उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर दो। मास्टर आप तो बस उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर दो, ये आपका फील्ड नहीं है, नंबर दो उधर। एक आधार सुना कर ये अभी विठल भाई ने कहा कि ये सागर की मोती है और मेरी कविता में भी एक स्थिति और मोती का प्रसंग है। वो भी सुना महाराज जी ने जो कहा वो भी देवता है जिन्होंने दो ली मोती वाली विठल भाई ने जब मोती की बात कही थी। मुनि श्री आप बार बार कहते हैं अपनी आत्मा में झांको, मुनि श्री आप बार बार कहते हैं अपनी आत्मा में झांको, स्वयं को देखो पहचानो, मैं बार बार प्रयत्न करता हूं, मैं बार बार प्रयत्न करता हूं, पर कोई खिड़की नहीं दिखती, कोई झरोखा नहीं मिलता जहां से भीतर झांकूं, अपने को खोजूं, पहचान सकूं। मुझे तो अब संदेह होने लगा है, मुझे तो अब संदेह होने लगा है कि मेरे भीतर कोई है भी जो प्रयत्न करने पर मिल भी सकता है। प्रयत्न नहीं छोड़े हैं, प्रयत्न नहीं छोड़े हैं, पर यह भी जानता हूं कि हर सीपी में, कि हर सीपी में मोती नहीं होता।
बहुत
अब अंतिम महाराज जी ने जो कविता कहने के लिए आदेश दिया है, देखिए जब मैं जाता हूँ कई बार तब लगता है कि कितने सारे लोग मुनि महाराज के चरण छू रहे हैं, उनके उम्र में जो बड़े हैं जैसे भव्य सागर जी, वो उम्र में इतने बड़े हैं लेकिन मुनि पद में बाद में दीक्षा ली, वो भी महाराज जी को नमोस्तु विनम्र। बड़े बड़े लोग, शेष लोग, नेता लोग, साहूकार लोग, हर तरह के लोग, बेटा अपन भी मुनि बन जाओ, ऐसा कई बार आपके भी मन में तो आया होगा अपन भी बन जाओ, कैसा सब लोग जो अपने को घास नहीं डालते वो भी अपने सामने आकर के और अपने चरण छू रहे हैं, फिर कहेंगे देखो उस वक्त तो घास नहीं डालते थे और चरण छू रहे हो। तो ऐसा विचार, एक एक विचार, विचार के लेवल पर मन में आता है और उस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी जो मुझको इस समय मिल नहीं रही है। सूने घर में कपड़े उतार कर मैं मुनि बनने की प्रैक्टिस करने लगा। सूने घर में कपड़े उतार कर मैं मुनि बनने की प्रैक्टिस करने लगा। बाल तो नहीं मोच पाया, बड़ा कठिन है। आपको मालूम है कि ये लुच्चा शब्द कैसे बना है? ये लुच्चा शब्द छठी, सातवीं, आठवीं शताब्दी में जैनियों के लिए बनाया गया था। जैनियों ने और बौद्धों ने जब विद्रोह किया तो जैनियों को, चूंकि उनके मुनिगण, आचार्यगण के श्लोक करते थे, तो घृणा सूचक, अपमान सूचक कहा जाता था कि ये लुच्चा है, और बौद्धों को कहा जाता था कि ये बुद्धू है। ये क्योंकि अगर बुद्धू शब्द तो बुद्धि से निकलना चाहिए, ये बुद्धि से नहीं निकला है, ये बौद्ध से निकला है, तो जैनियों को लुच्चा कहा जाता। अब तो सब सब हो गए, अब तो कोई जैनियों अकेलों के लिए इसका इस्तेमाल, तो शब्द को इसका एक सामान्य शब्द हो गया। मैंने शब्द आया तो मैंने कहा ये भी बता दें कि ऐसा भी इतिहास में हुआ आज से 1200 साल पहले। सूने घर में कपड़े उतार कर मैं